वह प्रकरण ब्रह्म संबंधी है, इसलिए इसमें ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है। जीवात्मा अथवा अन्य किसी का नहीं हुआ। उपरोक्त सूत्रों में भी ब्रह्म के प्रति की जाने वाली शंकाओं का समाधान किया गया है। अतः पूर्व पर प्रसंग के अनुसार भी वह सिद्ध होता है कि जहां ब्रह्म के प्रति ही अतः शब्द प्रयुक्त हुआ है, अन्य किसी के प्रति नहीं। हृदय रूपी गुहा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही बैठे हैं। सो कृतों द्वारा प्राप्त देह के भीतर हृदय गुहा में दोनों निवास करते हैं। वे दोनों छाया और धूप के समान परस्पर विरुद्ध धर्मी है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी पुरुष कहते हैं। और तीन बार अग्नि का चयन करने वाले तथा पंच अग्नि संपन्न कर्मी गण भी ऐसा ही कहते हैं। इस स्थल पर कर्म फल के भोगता जीव के साथ जिस द्वितीय व्यक्ति का आलेख है, वही ब्रह्म है। छाया और धूप के समान इनके स्वभाव में विरुद्धता है। छाया में जो प्रकाश रहता है, वह धूप के कारण ही रहता है। इसलिए जहां जीव की छाया रूप से और ब्रह्म की धूप रूप से मानना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा संसारक मार्ग में फंसा होने के कारण छाया रूप है और ब्रह्म संसार से मुक्त होने से तेज रूप है। सर्वव्यापक ब्रह्म का साक्षात करने के लिए योग स्थान हृदय ही है, इसलिए हृदय में ब्रह्म का निवास मानना अयुक्त नहीं है। ब्रह्म की उपासना सोकृत है, उसके द्वारा ही ब्रह्म से साक्षात्कार संभव है। छाया और धूप के गुणों में नितांत भिन्नता है, इसलिए जीव और ब्रह्म में उन गुणों की भिन्नता का आरोप करना भी युक्ति संगत है। जीव अल्पाग और विषयों में लिप्त है तथा ब्रह्म सर्वाग एवं विषयों से परे है। इस विलक्षणता के कारण उसकी भिन्नता स्पष्ट है। इन सब बातों से यह सिद्ध है कि इस सूत्र में दोनों से तात्पर्य जीव और ब्रह्म से ही है। उपरोक्त दोनों भोगता जीव और ब्रह्म ही है। यह बात दोनों के प्रति पृथक पृथक विशेषणों से भी सिद्ध होती है। उपरोक्त मंत्र में ही जीव और ब्रह्म को अव्यक्तव और व्यक्तव बोधक छाया और धूप कहा गया है। जीव मनन करता और ब्रह्म मनन विषय है। जीव साधक और ब्रह्म साध है। ब्रह्म जग समीक्षण बदित्वा के अनुसार ब्रह्म से उत्पन्न जीव स्वयं अपने को ब्रह्म अंश रूप से जानकर शांत रहता है। जहां ब्रह्मज ब्रह्म से उत्पन्न और गा जीव के विशेषण भेद से स्पष्ट है कि वैद्य ब्रह्म के प्रसंग में अतः ब्रह्म ही है अन कोई नहीं। युक्ति द्वारा यह सिद्ध है कि स्थूल के भीतर सूक्ष्म पदार्थ रह सकता है, सभी चराचर जीवों में निवास करने के कारण ही ब्रह्म को अंतर्जन्मी कहा गया है। इस नेत्र के मध्य जो पुरुष देखा जाता है वह आत्मा है, अमृत है, अपहपद है और वही ब्रह्म है। इस प्रकार हृदय में विराजमान और जोनियों योगियों के नेत्रों में दिखाई पड़ने वाला निर्लेप पुरुष ब्रह्म के सिवा अन्य कोई भी नहीं हो सकता। ब्रह्म के स्थान और नाम रूपों का शास्त्रों ने विभिन्न प्रकरणों में उल्लेख किया है, जैसे बृहदारणक में आत्मा को परमात्मा का स्थान कहा गया है, इसी से ब्रह्म को पृथ्वी आदि अनेक स्थानों में स्थित कहा गया है। इसी प्रकार योगियों द्वारा चक्षु में भी ब्रह्म उपासनीय भाव से दिखाई देता है, अतः ब्रह्म को नेत्र स्थानीय कहना अयोगत नहीं है। योगी जन नेत्र स्थित ब्रह्म की उपासना करते हैं, यह कहना ठीक भी है क्योंकि वह ब्रह्म और सुख में बताया गया है। अमृत और अपहपन दोनों ही मुख सुख के सूचक हैं। श्रुति में प्राणी ब्रह्म का ब्रह्म, ब्रह्म का ब्रह्म खा इत्यादि निर्देश से प्राण ही ब्रह्म है, सुख ही ब्रह्म है, आकाश रूप ही ब्रह्म है, इस प्रकार सुख विशिष्ट ब्रह्म ही अक्षयस्य ब्रह्म समझना चाहिए। उपनिषद आदि श्रवण करने वाले ज्ञानियों की जो गति कही गई है वही गति नेत्र में स्थित पुरुष को जानने वाले की बताई गई है। यह गति क्रम उप कौशल के प्रति कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उप कौशल को ब्रह्म का ही उपदेश दिया गया है, अतः अक्षय में दिखाई देने वाला पुरुष ब्रह्म है यही मानना चाहिए। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी किसी के नेत्र में स्थित नहीं रह सकता, इसलिए योगियों के नेत्रों में अवस्थित पुरुष ब्रह्म के सिवा और कोई नहीं है। यदि ये शंका करें कि नेत्र में किसी अन्न का प्रतिबिंब हो सकता है तो यह इसलिए ठीक नहीं है कि नेत्रेंद्रिय में प्रतिबिंबत बिंबतम हृदय परिवर्तित होते रहते हैं। जिस समय जो दृश्य होता है उस समय उसी का प्रतिबिंब नेत्र में स्पष्ट होता है, उसके हटते ही अदृश्य हो जाता है। जीव भी मन के द्वारा समय समय पर विविध विषयों को ग्रहण करता रहता है, तब नेत्र में निरंतर समान दृश्य स्थित नहीं रह सकता। निरंतर दिखाई पड़ने वाला पुरुष तो ब्रह्म ही है। फिर अमृतत्व और निरपेत्व आदि गुण भी ब्रह्म के सिवा अन किसी में नहीं हो सकते। इसलिए भी नेत्र अंतर्गत पुरुष को ब्रह्म ही मानना उपयुक्त है। बृहदारण के अनुसार जो पृथ्वी में रहकर भी उससे भिन्न है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका देह पृथ्वी है तथा जो पृथ्वी का नियामक है, वही अंतर्यामी आत्म पुरख तथा अमृत है। इसी संबंध में और भी कहा है कि यह तुम्हारा अमृत स्वरूप अंतरात्मा दिखाई नहीं देता, किंतु स्वयं सबको देखता है। वह सुनने में नहीं आता, परंतु स्वयं सब कुछ सुनता है। मनन करने में न आने पर भी वह स्वयं सबका मनन करता है। वह किसी के जानने में न आते हुए भी स्वयं सब का ज्ञाता है। ऐसा यह आत्मा नाशवान नहीं है, इससे भिन्न सभी कुछ नष्ट होने वाला है। इन सब से यह सिद्ध हुआ कि इस प्रसंग में कहा जाने वाला अंतर्यामी ब्रह्म ही है। सांख्य स्मृति में जहाँ जड़ प्रकृति के धर्मों का वर्णन किया गया है, वहाँ चेतन और ब्रह्म के धर्म ही प्रतिपादित हुए हैं। इसलिए वे धर्म अंतर्यामी ब्रह्म के नहीं हो सकते, परंतु इस कारण में अंतर्यामी शब्द से ब्रह्म का ही वर्णन मानना चाहिए। बाद नंदिनी और कानव इन दोनों शाखा वाले ज्ञानियों ने जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट रूप से कहा है। कानवों ने जो विज्ञाने तिष्टम वाक द्वारा जो विज्ञान में एवं विज्ञान का नियामक बताया और माद नंदिनी शाखा वालों ने जा असमनी तिष्टम अर्थात आत्मा में रहने वाला और उसका नियामक कहा है, इससे जीव और ब्रह्म का भेद सिद्ध है। विज्ञान अथवा आत्मा का नियामक ब्रह्म ही हो सकता है, जीव कदाप नहीं हो सकता। ब्रह्म आदृश होने आदि गुण धर्म वाला है और उसे अदृश्य अग्राहज अगोत्र अरूप अचक्षुष और अशरोत्तर अहस्त अपाद आदि कहा है। फिर यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह दिव अमूर्त पुरुषाकार बाहर पीतर निवास करने वाला अजन्म अप्राण और अमना शुभ्र एवं प्रकृति तथा जीव से परे है। यह सभी गुण उस पारब्रह्म परमेश्वर में ही हो सकते हैं, उससे भिन्न किसी में नहीं। इस प्रकरण में जो विशेषण कहे हैं वे ब्रह्म पर ही कटक होते हैं। अर्थात वह देखने वालों के हृदय गुहा में निहित है के अनुसार जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट है। इस प्रकार जीव का या ब्रह्म प्रकृति को जगत का उत्पत्ति करता नहीं कह सकते, केवल ब्रह्म को ही कह सकते हैं। कल्पना पूर्वक कथन को उपन्यास कहते हैं। ब्रह्म के विभिन्न रूपों की शास्त्रों में कल्पना की गई है कि अग्नि उस ब्रह्म का मूर्धा है, मुख है, चंद सूरज नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं, वेदवाणी वायु, वेदवाणी वायु प्राण, हृदय विश्व और पृथ्वी चरण है। यह ब्रह्म ही सब भूतों का अंतरात्मा है। इस प्रकार की रूप कल्पना ब्रह्म के निमित्त ही की जा सकती है, अन्न के प्रति नहीं। साधारण वैश्वानर शब्द की संगति में असाधारण गुणों का वर्णन होने से सिद्ध होता है कि वैश्वानर ब्रह्म के हेतु प्रयुक्त हुआ है। छंदोग में जय वर्णन आरंभ होकर पांचवे अध्याय की समाप्ति तक चलता है। हमारा आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है, पराचीन छाल और सत यज्ञ इंद्र द्योमन जन बुद्धिस इन पांचों ऋषियों ने विचार किया के और उन्हें वैश्वानर आत्मा की उपासना में प्रवृत्त हैं। उन्हें से उपासना के संबंध में पूछे। जब यह आरुणी से मिले तो वह इन्हें अशुपति कह कहे के पास ले गए। राजा ने उनका समुचित सत्कार किया और पर्याप्त धन देने की इच्छा प्रकट की। आरुणी सहित सब ऋषियों ने कहा, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हम तो आपसे वैश्वान और आत्मा के संबंध में जानने के निमित्त आए हैं, वही हमें बताइए। राजा ने उन्हें अतिथि गृह में ठहराकर दूसरे दिन अपने पास बुलाकर प्रत्येक से प्रश्न किया कि इस संबंध में आप क्या जानते हैं। प्रथम प्राचीन शाल ने कहा कि मैं आत्मा रूप से दिदुलोक की उपासना करता हूँ। फिर सत्यज्ञ ने कहा, मैं सूरज की उपासना करता हूँ। इंद्रद्युम्न ने वायु की उपासना करने की बात कही। जन ने आकाश की और बुडल ने जल की उपासना बताई। इन पर कहके ने कहा, अब विश्व आत्मा वैश्वानर के एक एक अंग की ही उपासना करते हैं। ये उपासना पूर्ण अंगों अंगी नहीं है, क्योंकि उस विश्वात्मा वैश्वानर का मस्तक दिदुलोक नेत्र सूरज प्राण वायु देह का मत भाग आकाश और बस्ती स्थान जल चरण आस्ति स्थान जल चरण पृथ्वी बक्ष स्थल वेदो लाव दर्व बेदी लाव दर्व हृदय ग्रहज पथ अग्नि मन अन्यो हार्ज पचन अग्नि और सुख आहग्निये अग्नि है। इसी वैश्वानर शब्द को जहां ब्रह्म का वाचक कहा है क्योंकि ब्रह्म के विशेष लक्षणों का निर्देश होने से वैश्वानर को ब्रह्म ही मानना चाहिए। सिमृतियों की वैश्वानर को ब्रह्म वाचक ही बताती है। मनुस्मृति में और ब्रह्म के वैश्वानर का कथन किया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वैश्वानर रूप से प्राणियों के देह आश्रित हो अवस्थान करता हूँ। महाभारत के शांति पर्व में भी जिसका अग्नि मुख दिव्यलोक मस्तक आकाश नभि पृथ्वी चरण सूर्य चक्षु और दिशाएं श्रोत है उन सर्व लोक स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार का उल्लेख है। यह सब वर्णन वैश्वानर का कहा वैश्वानर का ब्रह्म होना सिद्ध करते हैं। यदि ऐसा कहो कि वैश्वानर देहधारी के भीतर प्रतिष्ठित जठराग्नि है ऐसा ही शब्दार्थ द्वारा सिद्ध होता है तो यह कहना नितांत प्रामूलक है क्योंकि शास्त्रादि में जो उपदेश दिए गए हैं उन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि वैश्वानर परम पुरुष रूप ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जो इस वैश्वानर अग्नि को पुरखाकार और पुरख के भीतर प्रतिष्ठित जानता है कहकर ब्रह्म के अर्थ के अर्थ में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त कर दिया है। यदि इन शब्दों में भी जठराग्नि होने की शंका की जाए तो जठराग्नि के लिए विशेषण किसी प्रकार संभव नहीं होता। वैश्वानर शब्द यहाँ ब्रह्म के लिए ही कहा है। उपरोक्त किसी भी युक्ति से वैश्वानर का जठराग्नि अथवा पंच भौतिक पदार्थ होना सिद्ध नहीं होता। मंत्र वर्ण में जो पानुना पृथ्वी और अर्थात जो भूताग्नि पानु रूप से पृथ्वी आकाश और अंतरिक्ष में व्याप्त है ऐसा कहा है उससे भी किसी भूताग्नि का वैश्वानर होना सिद्ध नहीं है क्योंकि मंत्र वर्ण में कही इस प्रकार के विशेषण केवल प्रशंसा रूप में ही कहे गए हैं। आचार्य जैमिनी का मत है कि ब्रह्म के नेत्र नेतृत्व बोध से और सर्व कारण रूप ब्रह्म बोधक वैश्वानर शब्द के समान मैनादि गुण की संगति होने के कारण अग्नि को भी साक्षात ब्रह्म मान लेना चाहिए। इसमें भी वैश्वानर शब्द ब्रह्म वाचक ही समझना ठीक है। आशमर्थ्याचार्य ने ब्रह्म का परादेश रूप से साकार होना स्वीकार किया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कर्म के अव्युत्थान हेतु मैं अपने रूप को रचता हूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुगुण रूप में प्रकट होने की बात कही है। वेद वाक समूहों ने ब्रह्म को देश काल से परे कहा है, फिर भी बादरी आचार्य उसका निरंतर ध्यान और मन में स्मरण किया जाने के कारण ब्रह्म को परादेश मात्र कहते हैं। आचार्य यमिनी के मत में ब्रह्म परमेश्वरशाली है। अन्य श्रुतियों ने भी उनके इस मत का समर्थन किया है। ऐश्वर्यवान होने से आदेश मातृत्व भी उनकी अचिंत शक्ति के परिचायक हैं, क्योंकि ब्रह्म विश्व के सभी प्रदेशों में विद्यमान है। शतपथ ब्राह्मण में ये मस्तक नेत्र नासिका मुख चिंबक चाहे जीव की हो अथवा संपूर्ण विश्व की, इन सब में वैश्वानर ब्रह्म का निवास आया था। ब्रह्म को प्रादेश मात्र कथन करने में कोई विरोध नहीं। चाहे परादेश मात्र कहे परमेश्वरशाली कहे अथवा सर्वव्यापी आदि माने, सभी प्रकार से इस कारण में ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वास्तव में ब्रह्म के स्वरूप पर तर्क से कार्य नहीं चलता, क्योंकि स्मृति में भी ब्रह्म को तर्क बुद्धि से परे और अचिंत कहा गया है। ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त उपासना किसी भी प्रकार करे, परंतु उसे सर्वशक्तिमान सर्वनियंता आदि मानते हुए चिंतन में लग जाए, वह ब्रह्म सर्वत्र सभी रूपों में विद्यमान है, ऐसा मानना ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। ब्रह्म को स्वर्ग आदि का आश्रय रूप एवं आत्मा कहा है। आत्मा स्वरूप और अमृत का सेतु कहा गया है। इस मंत्र में जिस आत्मा को संपूर्ण विश्व का आधार माना है, वह ब्रह्म वाचक ही है। यह जीव शंभु तेजस्यारूप तेज स्वरूप सृष्टिकर्ता पुरुषोत्तम के दर्शन कर लेता है, तब वह पाप पूर्ण से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म में सम प्राप्त करता है। इसे सिद्ध हुआ कि मुक्त पुरुषों के लिए ब्रह्म ही प्राप्तव्य है। जड़ प्रकृति को पृथ्वी और स्वर्ग का आधार बताने वाला कोई शब्द इस प्रकरण में प्रयुक्त नहीं हुआ, इसलिए पृथ्वी और स्वर्ग का आश्रय ब्रह्म को ही मानना चाहिए। जैसे जड़ प्रकृति को स्वर्ग पृथ्वी का आधार मानने के पक्ष में कोई शब्द नहीं मिलता, वैसे ही जीवात्मा को भी आधार मानने के लिए भी कोई शब्द नहीं है। अतः स्वर्ग और पृथ्वी का आयतन केवल ब्रह्म है, अन्य कोई नहीं। आत्मा और जीव में भिन्नता बताई जाने से भी जीवात्मा स्वर्ग आदि का आधार नहीं हो सकता। संसार की माया में फंसा हुआ जीव मोह आदि के वशीभूत होता है, परंतु जब वह ब्रह्म को जान लेता है तो उसके मोह आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। इस पर जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है, इससे सिद्ध है इस पर आदि का आधार जीव या प्रकृति नहीं केवल ब्रह्म ही हो सकता है। इस प्रकरण में ब्रह्म का ही विवेचन किया गया है, इसलिए अन्य किसी के विवेचन का प्रश्न नहीं उठता, जिसके जान लेने से सभी कुछ जान लिया जाता है। वह गुण केवल ब्रह्म में ही है, इसलिए ब्रह्म को ही सबका आयतन मानना चाहिए। स्थिति और भोग का जो विवेचन किया है उससे जीवात्मा परमात्मा का भेद स्पष्ट परिलक्षित होता है। एक साथ रहने वाले दो पक्षी मित्र एक ही देह रूप वृक्ष पर रहते हैं, उनसे एक तो उस वृक्ष के भोगतव कर्म फल आदि को भोगता और दूसरा बिना भोगे ही केवल साक्षी रूप से प्रकाश करता है। इसके अनुसार कर्म फल आदि का भोगता जीव है और बिना भोगे ही स्थित रहने वाला ब्रह्म है। इस पर भोग और स्थिति के वर्णन से भी जीव और ब्रह्म की भिन्नता सिद्ध होती है। जीव से अधिक धर्मा ब्रह्म कहा गया है, इसलिए भूमा ब्रह्म ही है। भूमा सबसे बड़ा ब्रह्मवाचक शब्द है और बहु शब्द से भूमा शब्द बना है। इसे बहुतब अथवा बैपुल अर्थक मानना चाहिए, यद्यपि बैपुल शब्द से गुणों के उत्कर्ष मात्र का ग्रहण होता है, परंतु अल्प शब्द के सम्मुख इसका अर्थ विपुलता का महत्व प्रदर्शित करता है। भूमा ही तो जानने योग है, इसे भूमा की विशिष्टता सिद्ध होती है, परंतु एक शंका भी होती है कि महर्षि संत कुमार ने भूमा शब्द प्राण के निमित्त प्रयुक्त किया है अथवा ब्रह्म के निमित्त। इसका समाधान यह है कि संप्रसाद शब्द प्राणवाची होने से जीव का उपलक्षक तो है, परंतु वह जीव प्रभु कृपा प्राप्त मुक्त पुरुष होना चाहिए, क्योंकि सर्वदा सर्वथा सुखी जीव ही संप्रसाद कहलाता है। सुखी भूमा पुरुष संप्रसाद रूप प्राण से भी अधिक गुण युक्त कहा गया है। प्राण को भूमा मान ले तो उसके ऊपर स्थित भूमा का उपदेश संभव नहीं है। फिर भूमा की जिज्ञासा से कहा ब्रह्म की जिज्ञासा का ये उपदेश हो सकता है। प्राण की जिज्ञासा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए भूमा शब्द ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। उम्मा में जिन धर्मों का होना कहा गया उनको उनकी संगति ब्रह्म से ही होती है, इसलिए भी उम्मा शब्द ब्रह्मवाची ही मानना चाहिए। जहां अन किसी को नहीं देखता, अन किसी को श्रवण नहीं करता और अन कवि को नहीं जानता, वह पुमा है। अन को देखने सुनने जानने वाला अल्प है, पुमा अमृत है और अल्प नष्ट होने वाला है। नारद ने पूछा पुमा कहाँ प्रतिष्ठित है, तो उत्तर मिला अपनी ही महिमा में। इस प्रकार पुमा का स्वादित्व स्वादित्व प्रतिष्ठित है, जो ब्रह्म में ही हो सकता है, जीव में नहीं हो सकता, इसलिए पुमा को ब्रह्म भाषित ही मानना चाहिए। वह अक्षर ब्रह्म आकाश पर्यंत संपूर्ण विश्व को धारण करता है। अक्षर शब्द यहाँ ब्रह्म का वाचक है। गार्गी ने जागवर्ग से प्रश्न किया कि अभ्याकृत आकाश किस में ओतप्रोत है। एकमात्र अक्षर पुरुष में ही आकाश ओतप्रोत रहता है। इसके साथ उस अक्षर का रूप निर्देश करते हुए भी याज्ञवल्क जी कहते हैं, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न लघु है, न दीर्घ है, न लाल है, न गीला है, इस प्रकार के रूप गुण की विशेषता ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। ब्रह्म का प्रशासन संपूर्ण जगत पर है। सभी चराचर उसके इंगत पर अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। हे गार्गी, इस प्रकार के प्रशासन में रहकर ही पूमा चंद्रमा रहकर ही सूर्य चंद्रमा स्थित हैं, और इसी प्रकार के प्रशासन वच द्यावा पृथ्वी भी टिके हुए हैं। इस प्रकार का प्रशासन ब्रह्म में संभव है, जल प्रकृति या जीव में इतना समर्थ नहीं कि वह संसार का धारण कर सके। अन्न पदार्थ जीवादि भाव का निषेध कर देने से भी जहाँ ब्रह्म का वर्णन हुआ है, अदृष्ट दृष्ट अश्रुत श्रोत्री और अमंतम मंत अभिज्ञातम विज्ञात्री अर्थात जो अदृश्य रहकर सबको देखता है, अश्रुत होकर भी सबको सुनता है, जो मनन से ना आने वाला है परंतु सबको मनन करता है, उसे कोई नहीं जानता परंतु वह सबको जानता है, इस श्रुति वाक्य के अनुसार जय समर्थ ब्रह्म ही है। जीव का जय समर्थ नहीं कि वह स्वयं अप्रगट रहकर सबकी देख सुन सके, सबको देख सुन सके। इस लिए अक्षर शब्दवाची जीवादि नहीं केवल ब्रह्म है। ईक्षण कर्म का विषय ब्रह्म ही है और वह इन उपासना करने वाला जीवों में परे जो हिंदगर्भ है उससे भी जो परम पुरुष है उसका दर्शन करता है के अनुसार सिद्ध होता है कि ईक्षण कर्म ब्रह्म का ही है उन किसी का नहीं, क्योंकि ईक्षण कर्म अर्थात जिसके दर्शन किए जाते हैं वे ब्रह्म है। जीव परम काम में जाकर उसी के दर्शन करता है। देहर उत्तरे प्याम उत्तरे पे आगे कहे गए वाक्यों से देहर ब्रह्मवाची है। देहर के संबंध में वर्णन है कि इस ब्रह्मपुर के कमल के आकार का एक ग्रह है, उसके भीतर जो आकाश है उसे जानने की इच्छा करे। जहाँ ब्रह्मपुर का तात्पर्य मनुष्य देह से है, कमलाकार ग्रह हृदय में है, उसमें जिस जानने की जिज्ञासा का उपदेश है वह देह ब्रह्म ही है। देह को सुकृत दुकृत मरण शोक बुभुक्षा और पिपासा से रहत कहा है। इम्मा इसकर देहर शब्द को जहां ब्रह्म के हेतु ही प्रयुक्त समझना उचित है। गति के संबंध में आगे का सूत्र और भी प्रकट कर देता है।